ओम शांति। एक पहाड़ी के तट पर एक पहाड़ी की तलहटी पर एक योगी की झोपड़ी थी और वहां वो तपस्या करता था। पर उस गांव में वो बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए लोग उसके पास जीवन की समस्याओं के हल लेकर आते, प्रश्न लेकर आते थे जिनका वो हल उनको देता था। परंतु लोग इतने ज्यादा आते थे और इतने अधिक प्रश्न पूछते थे कि उसकी साधना भंग होती थी बार बार, और वही रोज के ही प्रश्न, शांति कैसे मिले, संबंध ठीक कैसे हो, बेटी की शादी करनी है, धन कैसे मिले, व्यवसाय आगे कैसे बढ़े, ऐसे अन स्पिरिचुअल गैर आध्यात्मिक प्रश्न से वो बहुत परेशान हो गया। पर वो बहुत अच्छा था और प्रसिद्ध था, और वो जो कहता था लोगों को पसंद आता था, परंतु उसकी अपनी साधना बार बार भंग होती थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं अब यहां से दूर चला जाऊंगा। तो वो एक स्थान ढूंढता है, एक दूसरी पहाड़ी उसे दिखती है और वो पहाड़ी बहुत सुंदर होती है। सोचता है इस पहाड़ी के ऊपर मैं अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, और उसी पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही है और जिसका पानी भी बहुत मीठा है। सोचता है मैं यहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां जब वो रहता था अब उसे बार बार बीच बीच में बहुत चिड़चिड़ापन होता था, क्योंकि वही रटे, वही वही प्रश्न, और कितना भी लोगों को उत्तर दो बार बार वही प्रश्न लेकर आते। इसलिए वो बीच बीच में साधना इसलिए भी भंग होती थी कि भयंकर क्रोध आता जाता, चिड़चिड़ा हो गया था स्वभाव। इसलिए उसने जगह बदलने की सोची। अब वो नए स्थान पर गया और बहुत शांति से रहने लगा, क्योंकि ये उस गांव से बहुत दूर स्थान था और सब कुछ अच्छा था, मीठे फल थे वहां पर और पानी भी था। और एक बार उसे बहुत जोर से प्यास लगी, तब वो नीचे नदी के पास आया पानी लेने। अपने कमंडलों में उसने पानी भरा और फिर ऊपर जाने लगा। अचानक पैर फिसला और वो नीचे गिरा और वो कमंडलू नीचे गिरा। तो वो नीचे आया, फिर से पानी भरा और फिर ऊपर जाने लगा। ठोकर लगी इस बार, फिर से नीचे गिरा कमंडलू। तीसरी बार फिर जाने लगा, बस पहुंचने ही वाला था कि कुछ हो गया, ध्यान यहां वहां चला गया और फिर से गिरा। अब उसे एकदम से जोश आ गया, क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तुरंत एक अनुभूति हुई कि यहां तो मनुष्य है ही नहीं, फिर भी क्रोध आ गया। तब क्रोध आता था, तब चिड़चिड़ापन होता था, क्यों? क्योंकि लोग थे और उनके प्रश्न थे और रोज रोज पूछते थे, पर यहां तो कोई भी नहीं है, फिर भी क्रोध आया। अर्थात क्रोध का कारण मनुष्य नहीं है। क्रोध कहां से निकल गया, निकल रहा है? हमारे ही भीतर से निकल रहा है, क्योंकि उसने संस्कार का रूप धारण कर रखा है। तो क्रोध बाहर से नहीं, कहां से आता है? अंदर से। तो काम व्यक्तियों पर नहीं, किस पे करना है? खुद पर करना है। तो ब्राह्मण जीवन के कल्चर, सबसे पहला कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का पहला कल्चर कौन सा है? सभ्यता। ब्राह्मण जीवन का पहला कल्चर कौन सा है? सभ्यता। तो संडे की अव्यक्त वाणी दूसरा भाग, जो चुने हुए महावाक्य है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और बाबा ने उन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। और मुख्य रूप से प्रश्न किस पर आधारित है? सारे क्रोध पर, क्रोध मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्षणिक पागलपन है, ट्रांसिएंट मैडनेस, कुछ पल के लिए आया हुआ क्या पागलपन, क्योंकि वो जाने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हो गया। और एंगर मैनेजमेंट ऐसा एक टॉपिक है कि जो लोग इस पर बोलते हैं वो भी इससे मुक्त नहीं है। एंगर मैनेजमेंट पर जो बोलते हैं उसको भी क्रोध आता है, क्योंकि ऑडियंस अगर कम आई तो उसको अच्छा नहीं लगता है। यदि ऑडियंस ने कुछ ऐसा वैसा प्रश्न पूछ लिया तो भी क्रोध आ जाता है। किसको? जो एंगर मैनेजमेंट पर बोल रहा है। अभी अभी एंगर मैनेजमेंट पर ऊपर क्लास कराई और नीचे उतरा सीढ़ियों से, और सारी पब्लिक वाह 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 वाह, और किसी ने कुछ ऐसा वैसा प्रश्न पूछ लिया तो बस टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। तो ये, और कोई ऐसा व्यक्ति है शांताकारम जिसे ये सब पता नहीं क्या क्या होता है एंगर मैनेजमेंट में, पर उसे कभी क्रोध नहीं आता। जैसे रामायण में दो पात्र एक साथ दिखाए हैं, एक पात्र निरंतर शांत है और दूसरा जो है वो बार बार क्रोधित होता है, लक्ष्मण। परंतु एक है राम एक है लक्ष्मण, दोनों के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि लक्ष्मण क्रोधित हुआ, राम शांत रहे, और हर बार लक्ष्मण को बाद में पश्चाताप हुआ। और उन्होंने उस राम से पूछता भी है वो एक बार कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कि आप कितने शांताकारम हो, आपको कभी कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं इतना आवेश और जोश में क्यों आ जाता हूं और बाद में फिर मुझे पश्चाताप करना पड़ता है। तो राम तो उसे अच्छा समझा देते कि तुम बाहर से कठोर हो पर अंदर से बहुत कोमल हो वगैरह वगैरह, पर क्रोध तो उसको बहुत आ जाता है। जैसे वो परशुराम आता है तो सबसे ज्यादा क्रोध तो राम को, लक्ष्मण को आता है। जैसे उस सभा में जनक कहता है पृथ्वी का पुरुष से भर चुकी है, कोई भी वीर पुरुष उस पृथ्वी पर नहीं है, क्रोध आ जाता है उसको फिर से। पर जब भी लक्ष्मण को क्रोध आता है, जल सम वचन बोले रघुनाथा, जल के समान शीतल वचन राम के मुख से निकलते हैं। राम और लक्ष्मण और सीता वनवास में है, और लक्ष्मण देखता है बहुत बड़ी विशाल सेना आ रही है और भरत दिख रहा है तो जरूर हमें मारने आ रहा है। वो कहता है चलो फटाफट धनुष उठाओ। बोलते हुआ क्या, अभी पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें मारने आ रहा है। इतना आवेश आ जाता है उसको, उसे तो पता ही नहीं वो किस लिए आ रहा है। फिर से पश्चाताप करता है कि भरत को मैं छोड़ूंगा नहीं अब। तो इसके स्वभाव में उग्रता है, बार बार क्रोधित होता है, तो पर हर बार उसे फिर पश्चाताप भी करना पड़ता है। रामायण का युद्ध पूरा हुआ, विभीषण को राजा बना दिया गया, पर जो मुख्य कार्य था वो अभी तक कर नहीं रहे श्री राम। सीता को तो लेके आओ, और जब कहते हैं लेके आओ, वो भी लक्ष्मण को नहीं कहते, बाकियों को कहते लेके आओ तुम लोग। लक्ष्मण को कहते चिता तैयार करो, वो कहता है चिता अगर ऐसा आपने किया तो मैं आपके विरुद्ध विद्रोह कर दूंगा। लक्ष्मण कहता है फिर से आवेश फिर से क्रोध, तो उसके स्वभाव में क्रोध दिखाया है, आवेश दिखाया है, पर क्या परिणाम हुआ उसका, हर बार दुखी होता है बेचारा, हर बार पश्चाताप करना पड़ता है, हर बार उसे पता चलता है बाद में कि परिस्थिति तो कुछ और ही थी और ये एकदम धीर गंभीर शांताकारम। तो क्या कहा बाबा ने क्रोध के लिए? बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और बाबा ने उसके उत्तर दिए। सबसे पहली बात तो थी कि ये क्या है, ब्राह्मण जीवन का फर्स्ट कल्चर क्या है, सभ्यता, ये पहली बात। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम धीरे और मीठा, और कैसा बोलो? सोच समझ के बोलो, और कैसा बोलो? तोल के बोलो, और कैसे बोलो? प्यार से बोलो, और कैसे बोलो? कैसे बोलो? रिजल्ट देख कर बोलो, और कैसे बोलो? त्रिकालदशी होकर बोलो, और कैसे बोलो? आगे वाले को देख कर बोलो, और कैसे बोलो? स्थान समय और परिस्थिति देख कर बोलो, और कैसे बोलो? ज्ञान युक्त, और कैसे बोलो? 50 बातें बताओ, टैक्टफुली बोलो, और कैसे बोलो? सुखदाई बोलो, और कैसे बोलो? प्रीतिकर बोल बोलो, और कैसे बोलो? रहम के बोल बोलो, और कैसे बोलो? सत्य वचन बोलो, और कैसे बोलो? योग युक्त तो होना चाहिए बोलो, और कैसे बोलो? हाँ, सार युक्त तो होने चाहिए, और कैसे बोलो? हाँ, अथॉरिटी वाले बोल होने चाहिए, तुम्हारे बोल में पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, और कैसे बोलो? यथार्थ होने चाहिए, राइट होने चाहिए, राइटियस होने चाहिए, और कैसे बोलो? महावाक्य होने चाहिए, तुम्हारे बोल कैसे होने चाहिए? रिकॉर्ड करने जैसे, क्लास वाले नहीं, दिन भर वाले, नहीं तो यहां रिकॉर्डिंग होते रहता है, ये वाला रिकॉर्डिंग नहीं, वो दिनचर्या में जो होता है ना वो और बोल कैसे होने चाहिए? रूहानियत वाले, और बोल कैसे होने चाहिए? रॉयल, और बोल कैसे होने चाहिए? अलौकिक स्पिरिचुअल, और बोल कैसे होने चाहिए? दूसरों को एनकरेज करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, दूसरों को उठाने वाले, उद्धार करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, उमंग उत्साह भरने वाले। और अशोक भाई, आपके बोल कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? जान देने, जान भरने वाले, आत्मा में इंस्पायर करने वाले, और हतोत्साहित आत्मा में नया ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार करने वाले, और कैसे होने चाहिए? और निराशा को आशावादी बनाने वाले, और होपलेस को होपफुल बनाने वाले, और बोल कैसे होने चाहिए? दिल को खुश करने वाले, खुशी राम भाई, दिल को खुश करने वाले, दमदार होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? बोल भी धारा प्रवाह, फ्लुएंट, अटक अटक के नहीं, फ्लुएंट, और स्पष्ट होने चाहिए, और व्याकरण भी शुद्ध होना चाहिए, प्रोनंसिएशन, उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो शिव बाबा आती है और ब्रह्मा बोलती है, मैं नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है, ऐसा ब्रह्मा बोलती है, ऐसे कई लोग बोलते हैं, साउथ वाले स्त्रीलिंग पुल्लिंग को इधर उधर कर देते हैं, तो भाषा भी भावना युक्त होने चाहिए, और लक्ष्य दूसरे को देने वाले होने चाहिए, और स्नेहपूर्ण होने चाहिए, और हाँ, इम्प्रेसिव होने चाहिए, प्रभावशाली बोल होने चाहिए, और तुले हुए होने चाहिए, और डबल स्वॉर्ड वाले, डबल स्टैंडर्ड वाले नहीं होने चाहिए, कटाक्ष वाले, अभी न होने वाले की बहुत बड़ी लिस्ट है, निंदा वाले ना हो, कटाक्ष वाले ना हो, कमेंट वाले ना हो, गिराने वाले ना हो, हर्ट करने वाले ना हो, दुखी बनाने वाले ना हो, किसी को रुलाने वाले ना हो, किसी को किसी की जान लेने वाले ना हो, हाँ, और दिल शिकस्त बनाने वाले ना हो, और लक्ष्य से भटकाने वाले ना हो, और कैसे होने चाहिए? गिरे हुए को उठाने वाले, और दो फिर भी बाकी है, जैसे होने चाहिए, मैं जैसे बोल होने चाहिए, बात समान, और सरल होने चाहिए, और राजयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त, और दुआओं से भरे हुए, और अच्छा बार बार कहे, वंस मोर, वंस मोर, फिर से बोलो, फिर से बोलो, अच्छा बोला तुमने, फिर बोलो, फिर बोलो, और एकदम इतने भी धीरे ना हो कि दूसरे को सुनाई ना दे, कोई लोग मोबाइल पे इतना स्लो बात करते हैं कि सुनाई कुछ भी नहीं देता है। और दो बाकी है, हो गया लव फूल। जरूरत नहीं है तो होने ही नहीं चाहिए, अनुभूति कराने वाले होनी चाहिए। और सोमान वाले बोल होने चाहिए, ये एक और एक बचा है। निर्मानता वाले बोल होने चाहिए, अहंकार वाले नहीं होने चाहिए, घमंड वाले नहीं होना चाहिए। वरदानी ये है दूसरा, ये सबसे टॉप लेवल के बोल है दो, वरदानी और सोमान वाले बोल। हमने जो बोल दिया वो दूसरी आत्मा के लिए वरदान बन गया, हमने बोल दिया और वो वरदान हो गया उसके लिए। तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ऐसा कर सकते हो, एकदम से वरदान ही बन गया उसके लिए, उस आत्मा के लिए वरदान ही बोल। और दूसरा समान युक्त बोल, समान में हम स्थित है और फिर बोल रहे, बहुत प्रभावशाली होंगे वो बोल, शक्तिशाली होंगे वो बोल। तो सबसे पहली बात बाबा ने कही सभ्यता के बारे में, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, ये इस ब्राह्मण परिवार की तहजीब, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता। दूसरा बोल कैसे हो, फिर तीसरा भी बहुत सारे प्रश्न है। कई बच्चे क्या कहते हैं, हम असत्य को देख नहीं सकते, हम असत्य को सुन नहीं सकते। असत्य देखकर और असत्य सुनकर हमको क्या होता है, जोश आता है। तो जोश आना ये क्या है, उसने एक गलती की, झूठ बोला, और तुमने कौन सी गलती की, जोश में आए, क्रोध आया, तो दोनों ही अपराधी हुए। इसलिए जोश आना ये भी असत्यता है। हर परिस्थिति में बहुत स्थिर रहकर, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत ऊंची साधना है, क्योंकि पता नहीं कहां से आवेग आवेश आ जाता है और बाद में फिर पश्चाताप भी करते रहो, लक्ष्मण जैसा, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कैसे बने राम, कितना ऊंचा टारगेट है। हर परिस्थिति में राम एकदम शांत है, एकदम शांत बना बनाया है, परंतु अभ्यास तो किया जा सकता है। तो दूसरा असत्य बोल रहे हैं, असत्य सुनाई दे रहा है, ये सब सुनते हुए भी ये नहीं भूलना है कि सत्य अपने आप में स्वयं सिद्ध है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है। असत्य के काले बादल सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकते, कितनी भी दीवारें आ जाए बीच में, सत्य सत्य है, सत्य की ही विजय है। ऊपर से दिखेगा असत्य जीत रहा है, जितने कोर्ट केसेस है उसमें ऊपर से क्या दिखता है, असत्य ही विजय हो रहा है, परंतु जीत अंततः सत्य की है, धर्म की है। और सत्य में बल है, असत्य में क्या प्रॉब्लम है, झूठ, झूठ और असत्य में क्या भेद है, एक है फॉल्सहुड, एक है अनट्रूथ, एक है झूठ, एक है असत्य। झूठ में चीटिंग है, कपट है, असत्य जो सत्य से दूर है, पर झूठ थोड़ा सा उससे आगे है। एक है झूठ, एक है फॉल्सहुड, एक है असत्य, एक है ब्लफिंग, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो एक झूठ, असत्य, धोखा देना, चोरी करना, ये कुछ कुछ चीजें उसमें अटैच होती है, नए नए शब्द तैयार होते हैं। तो एक है सत्य, एक है असत्य, असत्य दिखाई दे रहा है सब जगह और असत्य की जीत दिखाई दे रही है, तो भी अंदर विश्वास किस पर चाहिए, अपने सत्य पर, और अपने सत्य को सभ्यता पूर्वक बोलना है, जिद और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसके पहले भी सुनाया था जापान की वो एक सन्यासी की कहानी, एक युवा सन्यासी बहुत तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, चेहरे पर तेज है, वाणी में एक आकर्षण है, सारा गांव उससे प्रभावित है, सब लोग सुनने आते हैं, सब उसको अच्छा, सबको अच्छा लगता है। पर एक दिन गांव की एक कन्या जो कि गर्भवती हो जाती है और वो कहती है कि इस बच्चे के पिता वो सन्यासी है, तो सारे गांव वाले आ जाते हैं और उसकी जो झोपड़ी होती है वो कहता है क्या, कुछ बताने से पहले ही पहले झोपड़ी को आग लगा, जो सारा सामान बाहर फेंक देते, झोपड़ी को आग लगा देते, उसको भी बाहर निकाल देते हैं, वो कुछ नहीं कहता है। और फिर अंततः वो बच्चा लेते हैं और उसके चरणों में पटकते हैं, वो कहते हैं ये बच्चा तुम्हारा है। वो कहता है इज इट सो, क्या ये ऐसा है, अगर आप लोग कह रहे हो तो होगा, क्योंकि बच्चा रो रहा है, मेरा नहीं तो किसी और का होगा। और वो बच्चे को ले लेता और वक्त सब लोग चले जाते। अब वो उस बच्चे को लेकर, बिकॉज संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वो बड़ा कोमल है, प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि बच्चे को भूख लगी है, वो बच्चे को लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़ा है। कैसा दृश्य है, सन्यासी और बच्चे को लेकर भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, जिस घर के द्वार पर जाता है दरवाजा बंद। अब तक लोग उसके चरणों में आके गिरते थे, रोज कुछ कुछ उसके लिए लाते थे, अब घृणा से भर गए, नफरत से भर गए उसके लिए। जहां जाता है दरवाजा बंद, जहां जाता है दरवाजा बंद। फिर उस घर के द्वार पर आता है जहां वो स्त्री थी, वो कन्या थी, और वो बच्चा रो रहा है और वो मांग रहा है। और जब वो स्त्री उस सन्यासी को देखती है कि ये मैंने क्या कर दिया, इस पर मैंने गलत आरोप लगा दिया, और वो अपने पिता से कहती है कि ऐसा नहीं है, तब उसके पिता और फिर वो सारे गांव वाले वापस उसके पास जाते हैं, वापस उससे कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है वापस इज इट सो, पहले भी यही कहा था, तो आपने कहा तो सही होगा, और मेरा नहीं तो किसी और का होगा, पर ये रो रहा है, इसको कुछ तो दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई क्रोध नहीं उसे, कोई आवेश नहीं, कलंक लांछन जब अपवित्रता के लगते हैं, आत्मा झिल्ला उठती है, एकदम आवेग में आ जाती है, आवेश में आ जाती है, तब सत्य के ऊपर विश्वास खत्म हो जाता है, तब यह भूल ही जाता है कि सत्य की हमेशा जीत है, तब हम तुरंत सिद्ध और जिद करना चाहते हैं। परंतु सत्य में बल है, सामर्थ्य है अपना, उसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य सभी प्रमाणों से परे है। तो चाहे कोई कितने भी आरोप लगाए, यदि हम सत्य में स्थित है तो निर्भीक है, भय की आवश्यकता नहीं। सत्य की ही विजय होगी, आज नहीं होगी, बहुत लंबे समय के बाद होगी, पर होगी एक दिन, और जब होगी तब वो रियल विजय होगी, फाइनल में सत्य ही जीतेगा। 50 साल भी बीत सकते हैं, परंतु फिर भी जीत, इसके लिए सत्य के लिए क्या चाहिए, धैर्य, धीरज चाहिए, अथाह धीरज। तो बाबा ने क्या कहा, दो बातें, एक तो जब असत्य देखो सुनो तो जोश में आने की आवश्यकता नहीं, आवेश में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम जोश में आते हो, यह भी असत्य है, और सत्य को प्रूफ की आवश्यकता नहीं, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य जो है वो है, कोई कितना भी कुछ कहे, कोई हमें यह कहे कि तुम बहुत अहंकारी हो, इज इट सो, होगा, पर हमको यदि पता है मेरे अंदर वो नहीं है तो दूसरे को कहने से क्या होता है। कोई हमसे कहते तुमको बड़ा नाम मान शान का बहुत है तुमको, अगर वो हमारे अंदर है नहीं, अंदर से नहीं है, तो किसी के कहने से क्या होता है। कोई कहे तुम्हें बहुत दिखावा बहुत करते हो तुम, पर हमारे अंदर वो अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए कोई कुछ भी कहे, क्या कह देना, इज इट सो, अगर तुम कह रहे हो तो शायद होगा, सत्य ही कह रहे हो, तुम जैसा ज्ञानी अगर कह रहा है, पर किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। 100 लोग मिलके चिल्लाए और कहे कि ये सूरज है ना, ये रोशनी नहीं दे रहा है, तो वो सत्य हो जाएगा क्या, नहीं होगा। या 100 लोग मिलके कीचड़ सूरज के ऊपर फेंके, वो सूरज को कुछ होने वाला है क्या, कुछ नहीं होने वाला है। तो असत्य की विजय कभी हो नहीं सकती, और सत्य की हार कभी हो नहीं सकती, सत्य का स्वभाव ही अविनाशी है। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात थी वातावरण, वातावरण फैलाना, ये भी क्या है, एक सूक्ष्म पाप। हमने कुछ कहा नहीं, किया नहीं, परंतु हमने वातावरण फैला दिया, तो ये भी क्या हुआ, पाप की श्रेणी में आ गया। ये भी किसी के बारे में हमने खाली बात सुनी, वो पता नहीं कितनी सत्य है, और वो फैलाना चालू कर दी, किसी के चरित्र का हनन कर दिया किसी व्यक्ति ने दूसरे, और हमने वो बात सुनी और हमने भी सब जगह फैला दी, और लास्ट में हमको पता चला वैसा कुछ है ही नहीं, तो छूट जाएंगे क्या? सूक्ष्म और बड़ा कड़ा दंड मिलेगा किसी की ग्लानी का। बाबा ने कहा है, तुम किसी की एक बार ग्लानी करो तो तुम्हारी दुगुनी ग्लानी होगी, डबल ग्लानी होगी, एक दिन होनी ही है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। महात्मा बुद्ध के पास उसके शिष्य आते, कहते इसका कुछ करो, ये देवदत्त उसका चचेरा भाई, उसने अपना संघ स्थापन कर लिया, एक संघ महात्मा बुद्ध का था जिसमें हजारों लाखों सन्यासी थे, वो भी था देवदत्त, उसने वहां से निकलकर अपनी एक अलग पार्टी खोली, और यहां वाले सारे सन्यासियों को इधर लिया, और बहुत सारे षड्यंत्र किए। महात्मा बुद्ध के एक हाथी छोड़ा पागल, ऊपर से एक पत्थर फेंका बड़ा सा ताकि मारने के लिए, तो वो शिष्य गए और उनको कहने लगे कि आप कुछ करते क्यों नहीं इसके लिए, इतना ये दुष्ट है, इस दुष्ट के लिए कुछ तो करो। वो कहते दुष्ट उसको मत कहो, दुष्ट कहना ये भी प्रकंपन उत्पन्न करता है नकारात्मक, मैं ये भी क्यों कहूं कि वो कुछ कर रहा है, वो जो कर रहा है मेरा ही उसके साथ कुछ तो कुछ अकाउंट है, इसके लिए करने दो उसको, उसके करने से कुछ नहीं होगा। आज संसार महात्मा बुद्ध को याद करता है, उसको कौन याद करता है, उसका भी उतना ही बड़ा संघ था उसकी, क्योंकि वो असत्य था, क्योंकि असत्य की कोई चिरस्थाई, असत्य का चिरस्थाई स्वरूप नहीं है, और सत्य की कभी हार नहीं होती। सत्य पर विश्वास, सत्यमेव जयते, संपूर्ण विश्वास कि मेरे पास सत्य है, यह चाहे दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाए, विरुद्ध आसमान हो, कुछ भी हो जाए, हम बात कर रहे थे दूसरों की बातें फैलाने की, नहीं फैलानी। उसके बाद में पांचवी अगली पॉइंट, इसमें बाबा ने कहा वापस से कि कुछ कुछ लोग कहते हमारा आवाज ही ऐसा है, तो बाबा ने क्या उदाहरण दिया होगा, ये उदाहरण हमने पहली बार सुना, क्या उदाहरण दिया, कोई कहते हमारा आवाज ही बड़ा है क्रोध वाला, वो कुछ कुछ है ना ऊपर वाले, कौन नॉर्थ इंडियन में आवाज ही प्रेम से बात कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे तो ऐसा लगता है चिल्ला रहे, आवाज इतना कड़क है। तो बाबा ने क्या कहा, यहां क्या उदाहरण दिया, विज्ञान का उदाहरण दिया, विज्ञान से आवाज को कम ज्यादा कर सकते हो, साइंस की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से आवाज को कम ज्यादा नहीं कर सकते, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास करना पड़ेगा, कोई ये नहीं कह सकता मेरा आवाज ही वैसा है, मैं तो बोलता ही ऐसा, मुझे बचपन से ही ऐसी आदत है दूसरों को डांटने की, तो आवाज को कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद में कोई कोई कहते हैं ये जो क्रोध है ना बहुत जरूरी है, क्रोध क्या है, बहुत जरूरी है, तो लोग कंट्रोल में कैसे रहेंगे, कंट्रोल में रखना पड़ता है उनको, नहीं तो अपनी मन मर्जी करेंगे, मनचाही बातें करेंगे। तो बाबा ने कहा क्रोध क्या है, विकार है, और ज्ञानी आत्मा के लिए महाशत्रु है, चाहे क्रोध कैसा भी हो। जैसे एक व्यक्ति एक बहुत नई कार लाता है, इतनी कार अच्छी सी लाता है, और शाम को देखता है उसका एक 10 साल का बच्चा उस कार पे कुछ लिख रहा है, वो इससे स्क्रैच करके लिख रहा है, लोहे से, लोहे का नेल कील से कुछ लिख रहा है उसके ऊपर, उसको इतना गुस्सा आता, इतनी महंगी कार और आज ही लाई, और इसको इतना भी नहीं समझता है, कहीं पे भी लिखना चालू कर देता है, और वो लेता है वहां एक हथौड़ा होता है, सीधा उसके उसके उंगलियों पर ही मारता है, और उसकी उंगलियां तो पूरी खून रक्त रंजित हो जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसका बाप का दिल जागता है, उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है, और फिर डॉक्टर कहता है सारी उंगलियां काटनी पड़ेगी, और फिर वो उंगलियां कट जाती है, एम्पुटेशन। और वो जब ऑपरेशन चालू रहता है, वो घर आता है तो देखता है वो कार पे उसने क्या लिखा है। उसने लिखा होता है छोटे बच्चे ने, आई लव यू डैड। और फिर हॉस्पिटल जाता है और ऑपरेशन तो हो जाता है। वो बच्चा अपने बाप से पूछता है, डैडी मेरी उंगलियां वापस कब आएगी? तो क्रोध क्षणिक पागलपन है, आवेग है, आवेश है। उसमें जो करते हैं हम वो गलत निर्णय हो जाते हैं। इसके लिए क्रोध आ जाता है तो क्या करना चाहिए? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और क्या करना चाहिए? पानी पी लो, और क्या करो? उल्टी गिनती। पर उससे उल्टी गिनती का भी बताया एक बार, एक बच्चा इतना क्रोध करता है, छोटा बच्चा अपने सारे दोस्तों की रोज पिटाई करता है, एकदम तगड़ा होता है, मोटा ताजा, और उसके जितने साथी होते हैं सबकी पिटाई करता है रोज। उसके स्कूल के, उसके पिताजी उसको, पिताजी कहीं से कोर्स करके आते हैं एंगर मैनेजमेंट का, कहते हैं अपने बेटे को आज सिखाऊंगा, उसको कहते हैं इधर आओ, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो उल्टी गिनती चालू कर देना, 900, 99, 98, 97, तो तुम्हारा क्रोध जो है ना शांत हो जाएगा। तो दूसरे दिन देखता है वो बेटा एक दूसरे बच्चे के छाती पर बैठा हुआ है और गिनती कर रहा है 100, 99। वो पिताजी कहते तुम क्या कर रहे हो? वो कहते मुझे इतना क्रोध आ गया कि मैं गिनती कर रहा हूं, और ये बच्चे को बोलते गिनती के बाद अगर भाग गया तो? तो गिनती पूरी होने के बाद तो ये काम नहीं करता है हमेशा। क्रोध को धैर्य से जीतना है, क्रोध को किससे जीतना है? धैर्य से। क्रोध को किससे जीतना है? क्षमा से। क्रोध को किससे जीतना है? प्रेम से। ये बाकी जो मेथड्स है टेम्पररी है, पर पोस्टपोन भी कर दो तो भी थोड़ा तो कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इसके लिए जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज कुर्जियफ ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं जब 7 साल का था, मेरे पिताजी मर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आ जॉर्ज, मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे पास देने के लिए, मैं कुछ भी संपत्ति पैसा छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, केवल एक शिक्षा तुझे दे रहा हूं, वो याद रखना, जब भी तुझे क्रोध आए 24 घंटे के लिए स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। कोई भी तुझे कहे, कुछ भी कह दे, रुक जाना और उसको कहना मैं कल उत्तर दूंगा। तो कल तक क्या हो जाएगा? क्रोध शांत। तो क्रोध को क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना। और क्रोध को जीतने की विधि, वॉकिंग, लंबा वॉकिंग, और जगह को चेंज कर देना, उस स्थान से दूर चले जाना। और क्रोध को जीतने की विधि, उस व्यक्ति को शायद हमने अंतर्मन से स्वीकार नहीं किया है, उसे स्वीकार करना है, उसके पार्ट को स्वीकार करना है। और समय के साथ दुश्मन और दोस्त दोनों बदलते जाते हैं। सबको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके स्वभाव को, वो वैसा ही है, कितना भी उसको समझाओ। कोई व्यक्ति एक सेवाधारी आ गया, सूरज भाई जी ने एक उदाहरण दिया था, बहुत यज्ञ की शुरुआत में एक सेवाधारी आया, उसको भाई साहब ने कहा तुम आज खिचड़ी बनाओ, तो वो तो एकदम ऐसा था कि उसने हर बार गड़बड़ की, कभी चावल बहुत ले लिया, कभी दाल इतनी सी ले ली, अब इस बार समझाया, फिर अगली बार उसको फिर समझाया तो फिर उल्टा कर दिया, फिर तीसरी बार समझाया फिर गड़बड़ कर दिया, और गेस्ट सारी इतनी पार्टी आ गई, फिर भाई साहब ने कहा ये सेवा इसके लिए नहीं, इसको थोड़ा दूसरा दे दो, बस इस पर क्रोध करने से कुछ मतलब ही नहीं है, कितना डांटे उसको। कोई एक व्यक्ति गलती करता है, उसको 10 बार हमने डांटा, उसके बाद भी वही गलती करता है, तो उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि उतनी ही है। हर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट सेवा नहीं कर सकता, उसका काम उतना ही है, उसको उस तरह की सेवा दे दो, ये सामान उठा के वहां रखो बस, और वो सामान उठा के वहां रखो, इतना वो कर सकता है, इससे ज्यादा उसको अब काम दो, 4 काम एक साथ दे दिए तो सब गड़बड़, और फिर हमें ही क्रोध करना पड़ेगा उसको। क्रोध वो चीज है कि दूसरों की गलती के लिए हम अपने आप को सजा देते हैं, क्रोध अर्थात गलती दूसरे की, और सजा किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को, क्योंकि जब हम क्रोध करते तो अंदर क्या हो जाता है? जलन, हार्ट रेट बढ़ जाता है, आग लग जाती, आवेश आ जाता है, डिसीजंस बुद्धि योग कर सकते हैं क्या? अभी अभी क्रोध करके आए, बाबा ने क्या कहा, कितना देर तक सब चलता है? तुमको अगर क्रोध करते देख लिया किसी ने तो सबको याद रहता है, ये क्रोधी है, बाप की निंदा होती है उससे। तो कितना करना चाहिए? कम करना चाहिए। महीने से भी जीवन भर भी चल सकता है, अगर एक बार आत्मा के अंदर इंप्रेशन पड़ गया कि ये क्रोध किया है इसने, उसके बाद कितना भी उसको योग कराते देखो, क्लास कराते देखो, ये क्रोधी है, सबसे पहला विचार वही आएगा उसके लिए, ये क्रोधी है। पर वो अंदर चला गया है, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और दूसरी बात, क्रोध कितना भी, एक विदेश की बहन ने अनुभव सुनाया था कि एक बहन को उन्होंने, सारे सेंटर निवासियों ने पैसे कोई सेवा दी और वो बहन को जिम्मेवारी दी पैसे संभालने की, और वो बहन ने वो पैसे गुम कर दिए। वो पैसे कहां के थे? सारे सेवा केंद्र के विद्यार्थियों के। अब वो बहन ने गुम कर दिए, तो इस बहन ने उसको डांटा और बाद में पैसे मिल गए। पर वो जो डांटा और वो जो संबंध में दरार पड़ी, क्रैक, उसने कहा आज 30 साल हो गए, हम लोग अब भी साथ में सेवा करते हैं, पर वो क्रैक अब भी है, वो नहीं भरी अभी तक, उसके लिए क्या करें अब? वो अभी भी थोड़ा सा खिंचतान अब भी है, क्योंकि उसको डांट दिया था। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, उसके पिताजी सब कुछ करते ठीक नहीं होता है, वो कहता है कि जब भी तुम्हें क्रोध आए, वो जो तुम्हारा फेंस है घर के बाहर, दीवार है, वहां पर तुम्हें कील ठोकना जब भी क्रोध आए। तो एक महीने में 37 कील ठोकता है वो, इतनी बार क्रोध आया उसको। फिर धीरे धीरे अब उसका क्रोध, कौन ठोकेगा हर बार, उसको थोड़ा अभी लगता है अभी तुम ऐसा करो, जब भी तुम्हें क्रोध ना आए तब कील को निकालना। तो फिर जब एक दिन होता है कि उसको बिल्कुल क्रोध नहीं आता, खुश हो जाता है, एक कील को निकालता है, दूसरे दिन दूसरे निकालता है, ऐसे करते करते सारी कील जितनी होती है सारी निकाल देता है। और पिताजी से कहता है, एक मास अभी 37 डेज से एक बार भी मैंने क्रोध नहीं किया। पिताजी कहते हैं चलो। तो वो जो पूरा जो रहता है वुडन लकड़े का, और जिसपे कील ठोकी थी और उसने निकाले, वो कहता है देखो पिताजी सारी कील निकल गई। पिताजी कहते हैं कील तो निकल गई पर गड्ढा अब भी रह गए, सारे गड्ढे रह गए, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्रोध तो कर लिया, संबंध को डिस्टर्ब कर लिया, किसी को बहुत डांट दिया। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, वस्तुएं आ जाएगी, व्यक्ति कभी नहीं आएगा। इसके लिए वस्तु को व्यक्ति से अधिक महत्व नहीं देना है। किसी को हमने बहुत कीमती चीज दी, ये लैपटॉप किसी को दिया, थोड़ा पकड़ो, और उसने नीचे पटक दिया और वो फूट गया, इतना 60,000 का गया। हमने कहा तुमने ऐसा कर दिया, और उसको इतना डाटा, ज्ञान ही छोड़ के चला गया। लैपटॉप आ जाएगा पर व्यक्ति नहीं आएगा, पैसे आ जाएंगे पर वो माता नहीं आएगी वापस जिसको बहन ने डांट दिया। व्यक्ति वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आ जाएगी, सेवा आ जाएगी। इसके लिए इसके पहले भी बताया था 3 इक्वेशन, 1 करोड़ की क्या है हमारी स्थिति, 1 लाख की हमारा व्यक्ति पर्सन संबंध, और 1,000 का सेवा। तीनों में से अगर किसी को चुनना है तो सबसे पहला है स्थिति, हमारी स्थिति सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये खराब हो रही है किसी भी चीज से तो बहुत बड़ा नुकसान है। 1 करोड़ की हमारी स्थिति है, 1 लाख का क्या है वो व्यक्ति या वो संबंध, और लास्ट है वस्तु, वो सामान, वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग। ये चला गया तो चलेगा पर व्यक्ति नहीं चाहिए छोटी मोटी चीजों के लिए, क्योंकि व्यक्ति एक बार चला गया उसको कैसे लाओगे आप, मना नहीं सकते। ये लैपटॉप तो खरीद सकते हो पर व्यक्ति को कैसे खरीदोगे, नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए ब्राह्मणों का पहला कल्चर कौन सा है? सभ्यता। और सभ्यता में बोल, चलन, गुड मैनर्स, और आवेश नहीं, क्रोध नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, ये 3 चीजें हैं। जोश, चिड़चिड़ापन और क्रोध, क्रोध के ये 2 बच्चे हैं, जोश और चिड़चिड़ापन। जोश में होश व्यक्ति खो देता है, और चिड़चिड़ापन में क्या करता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं, हर बात से इरिटेट होता है, कुछ भी पूछो तो इरिटेशन होता है उसको, कुछ भी पूछो तो। ऐसे घर में शांति नहीं रह सकती, अशांत रहता है परिवार। तो हमको क्या बनना है, राम, राम जैसा शांत, शांताकारम भुजग शयनम अच्छा ओम शांति।